दानियल की पुस्तक के संख्या 45 प्रतीकात्मक रूपांतरण। दानियल की पुस्तक में दैनिक के रहस्य का अनावरण।
दानियल की पुस्तक में डेली को विलियम मिलर ने मूर्ति पूजक रोम या मूर्ति पूजा के प्रतीक के रूप में पहचाना था, परंतु अंतिम दिनों में ये विलियम मिलर की बुनियादी सच्चाइयों के अस्वीकार का प्रतीक है। ये उस विद्रोह के अंत का प्रतिनिधित्व करता है जो 1863 में आरंभ हुआ, जब लैव्य व्यवस्था 26 में मूसा के 7 बार के विषय में मिलर की समझ को अस्वीकार कर दिया गया। जब एडवेंटवाद ने डेली को मूर्ति पूजा के रूप में सही पहचानने को अस्वीकार किया, तो उन्होंने शैतान के प्रतीक को मसीह के प्रतीक में बदल दिया। यशाया ये पहचानते हैं कि ये कार्य सब कुछ उलट देने का था। डेली के अस्वीकार को 1930 के दशक में लागू कर दिया गया, एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी, परंतु ये 1901 से ही एक विवाद बना हुआ था, एडवेंटवाद की दूसरी पीढ़ी। जैसे प्राचीन इसराइल में हुआ, उसी प्रकार सत्य के क्रमिक अस्वीकार ने ऐसी त्रुटि को स्वीकार करने तक पहुंचा दिया जिसमें अक्षम्य पाप के तत्व निहित थे।
कुतर्की यहूदियों के लिए अक्षम्य पाप ये था कि उन्होंने मसीह द्वारा किए गए कार्यों को शैतान के कार्य करार दिया। प्राचीन इसराइल आधुनिक इसराइल का प्रधान प्रतीक है, और आधुनिक इसराइल ने वही काम किया, बस उल्टा। उन्होंने शैतान के कार्यों, पैगनवाद को लिया और उन कार्यों को मसीह से जोड़ दिया। प्राचीन इसराइल के विद्रोह में ये भी शामिल है कि उन्होंने शैतान को अपना राजा चुना।
जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो यीशु को बाहर ले आया और उस स्थान पर जिसे पत्थरी फर्श कहा जाता है, परंतु इब्रानी में गब्बता, वो न्याय आसन पर बैठ गया। और वो पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग 6ठा घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। पर वे चिल्लाकर बोले, उसे हटाओ, उसे हटाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, हमारा कोई राजा नहीं, केवल कैसर। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उनके हाथ सौंप दिया, और वे यीशु को लेकर ले चले। यूहन्ना 19:13-16।
पिलात मूर्ति पूजक मिरल्स का प्रतिनिधि था, और सिस्टर व्हाइट बताती हैं कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जो अजगर स्वर्ग से निकाल दिया गया वो शैतान है, परंतु दूसरे अर्थ में वो अजगर मूर्ति पूजक रोम भी है, इसलिए नित्य द्वारा उस अजगर का प्रतीक किया गया है। प्राचीन इसराइल की बगावत का अंत तब हुआ जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, हमारा कोई राजा नहीं, केवल कैसर। ये इस बात की सार्वजनिक घोषणा थी कि वे अपने राजा के अधीन प्रजा है, और उनका राजा शैतान था। परमेश्वर को राजा मानने के विरुद्ध वो बगावत भविष्यद्वक्ता शमूएल के दिनों में आरंभ हुई, जब उन्होंने परमेश्वर को अपने राजा के रूप में ठुकराया और ये मांग की कि उन्हें एक मानव राजा दिया जाए ताकि वे अन्य जातियों के समान हो सके।
तब इसराइल के सब बुजुर्ग इकट्ठे हुए और रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहा, देख तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राहों पर नहीं चलते। अब सब जातियों के समान हमारा न्याय करने के लिए हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। परंतु जब उन्होंने कहा, हमारा न्याय करने के लिए हमें एक राजा दे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की। तब प्रभु ने शमूएल से कहा, जो कुछ लोग तुझसे कहते हैं उस सब में उनकी बात मान ले, क्योंकि उन्होंने तेरा नहीं मेरा तिरस्कार किया है कि मैं उन पर राज्य न करूं। जिस प्रकार के काम वे उस दिन से जिस दिन मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं, कि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा की है, वैसा ही वे तेरे साथ भी कर रहे हैं। 1 शमूएल 8:1। ये जड़नों पर
प्राचीन इसराइल ने कभी ये नहीं माना कि उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था, या कि एक सांसारिक राजा की उनकी इच्छा इस हद तक बढ़ जाएगी कि वे मसीहा को सूली पर चढ़ाएंगे और शैतान को अपना राजा चुन लेंगे। उनकी बगावत उनकी ही आत्मधर्मी धारणाओं के कारण उनकी आंखों से ओझल रही कि परमेश्वर को अस्वीकार करने के बावजूद वे अभी भी चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि आखिरकार उनका तर्क था, परमेश्वर ने शमूएल के बाद भी पवित्र भविष्यवाणी की सेवकाई बनाए रखी थी।
उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की भविष्य सूचक सेवा को गलत समझा।
ये मानते हुए कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, वे ये नहीं देख पाए कि वे परमेश्वर से बहुत दूर थे और भविष्यद्वक्ता उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की गतिविधियों को परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रमाण के रूप में समझ लिया। ये तब भी था जबकि वे उनके पास भेजे गए भविष्यद्वक्ताओं के सभी संदेशों को लगातार अस्वीकार करते रहे। यही भ्रम 1863 में एडवेंटिज्म पर भी आ पड़ा। एडवेंटिज्म ने उस आंदोलन को अस्वीकार कर दिया जो विलियम मिलर की सेवकाई के माध्यम से एकत्रित किया गया था, और उसी वर्ष उन्होंने कानूनी रूप से पंजीकृत कलीसिया बनना चुना, जिस वर्ष उन्होंने मूसा के 7 बार के संदेश को, जैसा कि एलिया विलियम मिलर द्वारा दिया गया था, अस्वीकार किया। उसी वर्ष उन्होंने एक नकली भविष्य सूचक चार्ट बनाया जिसे अब पढ़ा नहीं जा सकता था और जो हबक्कूक 2:3 के अनुसार अब बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसे समझाने के लिए पर्चे की आवश्यकता पड़ती थी। हबक्कूक के चार्ट वैसे ही पढ़े जा सकते थे जैसे वे थे और इसलिए वे बोल सकते थे। एडवेंटवादी आंदोलन ने 1863 में किए गए अपने निर्णय का कोई आत्मपरीक्षण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आखिरकार उनके बीच एक भविष्यवक्त्री थी जो ये सिद्ध करती थी कि वे वही शेष लोग हैं जिन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की आत्मा रखने वाले के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने प्राचीन इसराइल की वही भावना और रवैया प्रदर्शित किया और जो विद्रोह मिलर द्वारा खोजे गए पहले रत्न के अस्वीकार से शुरू हुआ था, उसने अंततः उन्हें द डेली नामक रत्न की मिलर द्वारा की गई पहचान को भी अस्वीकार करने तक पहुंचा दिया। आधुनिक इसराइल ने द डेली के बारे में मिलर की समझ कि ये मूर्तिपूजक रोम का प्रतीक है और मूर्तिपूजक रोम बदले में शैतान का प्रतीक है को अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि द डेली मसीह का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक इसराइल ने एक शैतानी प्रतीक को मसीह के प्रतीक के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन इसराइल ने घोषणा की थी कि उनके पास कैसर के सिवा कोई राजा नहीं है। कैसर मूर्तिपूजक रोम का प्रतिनिधि था और मूर्तिपूजक रोम शैतान का प्रतीक है।
भविष्यवाणी के अन उपयोग के संदर्भ में उस विकल्प ने ये मांग की कि आधुनिक इसराइल को दानियल के अध्याय 7, 8 और 9 को पुनर्परिभाषित करना पड़े, जो वही अध्याय है जिन्हें उलाय नदी द्वारा दर्शाया गया है और जो मिलेराइट इतिहास में ज्ञान में वृद्धि का स्रोत थे। उन्हें उन अध्यायों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अध्याय 8 में द डेली का 3 बार सीधे उल्लेख है। उस ऐतिहासिक संदर्भ से विवश होकर जिसमें उलाय नदी का दर्शन खोला गया था, मिलराइटों को ये दिखाई नहीं देता था कि मसीह के लौटकर अपना अनंत राज्य स्थापित करने, जैसा कि दानियेल अध्याय 2 में दर्शाया गया था, से पहले पृथ्वी पर कोई अन्य राज्य होंगे। इसलिए उन्होंने चौथे राज्य रोम को 2 पहलुओं वाला एक ही राज्य माना। ये दोनों पहलू दानियेल के अध्याय 7 और 8 में सीधे रूप से चित्रित किए गए थे। दानियेल स्पष्ट करता है कि अध्याय 8 में उसे जो दर्शन मिला उसे अध्याय 7 के दर्शन के संबंध में समझा जाना था।
राजा बेलशस्सर के राज्य के 3रे वर्ष में मुझ दानियेल को एक दर्शन हुआ, पहले जो मुझे दिखाई दिया था उसके बाद। दानियेल 8:1।
जो दर्शन दानियेल को पहले प्रकट हुआ वही 7वें अध्याय का दर्शन था।
बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने अपने बिछौने पर एक स्वप्न देखा और उसके सिर पर दर्शन हुए। तब उसने उस स्वप्न को लिखा और उन बातों का सार बताया। दानियेल 7:1।
ये दो दर्शन बाइबल की भविष्यवाणी में वर्णित राज्यों के 2 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें पहली बार दानियेल की पुस्तक के 2रे अध्याय में प्रस्तुत किया गया था। बाबुल, मादय फारस, यूनान और रोम के 4 रियल राज्य दानियेल के 7वें अध्याय में और फिर 8वें अध्याय में भी दोहराए गए, परंतु इन 4ों राज्यों के राजनीतिक तत्वों और धार्मिक तत्वों के बीच एक भेद के साथ। दानियेल के 7वें अध्याय में राज्यों को शिकारी पशुओं द्वारा दर्शाया गया है, पर 8वें अध्याय में वही राज्य पवित्र स्थान के पशुओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। दानियेल के 7वें अध्याय के दर्शन को समझना चाहता था और गैब्रियल उसे समझाने के लिए उसके पास आया।
मैं दानियल अपने शरीर के भीतर आत्मा में उद्विग्न था और मेरे सिर के दर्शन ने मुझे व्याकुल किया। मैं वहां खड़े लोगों में से एक के पास गया और उससे इन सब बातों का सत्य पूछा। तब उसने मुझे बताया और इन बातों का अर्थ समझाया। ये बड़े पशु जो चार हैं, पृथ्वी से उठने वाले चार राजा हैं, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को ग्रहण करेंगे और राज्य को सदा सर्वदा युगानुयुग लिए रहेंगे। दानियल 7:15-18।
दानियल को ये बताया गया कि वे चार पशीन चार सांसारिक राज्य थे जो तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक परमेश्वर का अनंत राज्य स्थापित नहीं हो जाता। ये दानियल के अध्याय 2 के अनुरूप है। परमेश्वर के अनंत राज्य के आगमन से पहले चार सांसारिक राज्य होने थे, जैसा कि अध्याय 2 में उस चट्टान द्वारा दर्शाया गया है जो पर्वत से काटकर निकाली गई और जिसने पूरी पृथ्वी को भर दिया। जब उन्होंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के पृथ्वी से निकलने वाले पशु के विषय को संबोधित किया, तब बहन व्हाइट ने उन चार राज्यों के बारे में मिलरवादी समझ को मिलरवादी समझ की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ा दिया।
इस बिंदु पर एक अन्य प्रतीक प्रस्तुत किया जाता है। भविष्यद्वक्ता कहते हैं, मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को ऊपर आते देखा और उसके दो सींग मेमने के समान थे। पद 11। इस पशु का रूप और उसके उठने का ढंग दोनों इस बात का संकेत करते हैं कि जिस राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करता है वो पिछले प्रतीकों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए राष्ट्रों से भिन्न है। संसार पर शासन करने वाले महान राज्य भविष्यद्वक्ता दानियल को शिकारी पशुओं के रूप में दिखाए गए जो तब उठे जब आकाश की चारों पवने महान समुद्र पर भिड़ी। दानियल 7:2। प्रकाशित वाक्य ज्ञात 17 में एक स्वर्गदूत ने समझाया कि जल का अर्थ लोग, भीड़े, राष्ट्र और भाषाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 17:15। पवने संघर्ष का प्रतीक है। स्वर्ग की चारों पवनों का महान समुद्र पर संघर्ष करना उन भयानक विजय और क्रांति के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके द्वारा राज्यों ने सत्ता प्राप्त की है। महान विवाद 33।
ये पशु उन विजयों के प्रतीक हैं जो तब संपन्न हुई जब राज्य सत्ता में आए। भविष्य सूचक रूप से एक शिकारी पशु किसी राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दानियल के अध्याय 2 और 7 में जिन राज्यों का वर्णन है वही राज्य अध्याय 8 में भी दर्शाए गए हैं, पर वह वे सब परमेश्वर के पवित्र स्थान से लिए गए तत्वों से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार वे राज्यों के धार्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे सब कलीसिया और राज्य का मेल थे।
राजा बेलशस्सर के राज्य के तीसरे वर्ष में मुझे अर्थात मुझे दानियल को एक दर्शन हुआ। उस पहले दर्शन के बाद जो मुझे हुआ था और मैंने दर्शन में देखा और ऐसा हुआ कि जब मैं देख रहा था तब मैं एलाम प्रांत में स्थित शूसन के महल में था और मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलाई नदी के वस्त किनारे था। तब मैंने अपनी आँखें उठाईं और देखा कि नदी के सामने एक मेढ़ा खड़ा था जिसके दो सींग थे और वे दोनों सींग ऊंचे थे परंतु एक दूसरे से ऊँचा था और जो ऊँचा था वो बाद में उगा। मैंने उस मेढ़े को पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर धकेलते देखा ऐसा कि उसके सामने कोई पशु ठहर न सका और न कोई था जो उसके हाथ से छुड़ा सके, परंतु वो अपनी इच्छा के अनुसार करता गया और महान हो गया। और जब मैं विचार कर रहा था तो देखो पश्चिम से समस्त पृथ्वी पर से एक नर बकरा आया और भूमि को छूता नहीं था और उस बकरे की आंखों के बीच एक बड़ा सींग था। वह उस दो सींगों वाले मेढ़े के पास आया जिसे मैं नदी के सामने खड़ा देख चुका था और अपनी शक्ति के प्रचंड क्रोध में उस पर दौड़ा। मैंने देखा कि वो मेढ़े के समीप आ पहुंचा और उसके विरुद्ध अत्यंत क्रोधित हुआ और मेढ़े को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले और मेढ़े में ऐसा बल ना रहा कि वो उसके सामने ठहर सके, परंतु उसने उसे भूमि पर पटक दिया और उसे रौंद डाला और कोई ना था जो उस मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ा सके। तब वह नर बकरा अत्यंत महान हो गया, परंतु जब वह बलवंत हो गया तब वह बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह चार उल्लेखनीय सींग उगाए जो आकाश की चारों दिशाओं की ओर थे। दानियल 8:12 तक अथास।
अध्याय 8 दानियल की इस पुष्टि से आरंभ होता है कि वो तब बाइबल की भविष्यवाणी के प्रथम राज्य बाबुल के इतिहास में रह रहा है, परंतु उसके दर्शन में बाबुल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रतीक चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि वो उस मेंढे से आरंभ होता है जो दूसरे पार्थिव राज्य मादी फारस का प्रतिनिधित्व करता था। बाबुल के प्रतीक का अभाव उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि बाबुल की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वो ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हटा दिया जाता है और उसके बाद पुनः स्थापित किया जाता है, जैसा कि नबूकदनेस्सर के 7 काल तक पशु के समान जीने से दर्शाया गया है। उन 7 काल के दौरान आध्यात्मिक बाबुल पापाई सत्ता का भी एक तत्व प्रस्तुत होता है, क्योंकि पापाई सत्ता वो राज्य है जिसे प्रतीकात्मक 70 वर्षों तक भुला दिया गया था, जिन दिनों में उसे घातक घाव लगा था। ये तथ्य कि दानियल बताता है कि उसे दर्शन राजा बेलशज्जर के राज्य के 3रे वर्ष में मिला, बाबुल को उस राज्य के रूप में चिन्हित करता है जो मादी फारस के दूसरे राज्य से पहले है, परंतु ये बाबुल को उस छिपे या भूले हुए राज्य के रूप में विशेष रूप से रेखांकित करता है जिसे एक राजा के दिनों में भुला दिया जाता है। अध्याय 8 के पशु शिकारी पशु नहीं है, वे ऐसे पशु है जिन्हें पवित्र स्थान की सेवा विधि में बलिदान के लिए उपयोग किया जाता था। 4थे राज्य को एक छोटा सा सींग के रूप में दर्शाया गया है, न कि किसी पशु के रूप में, परंतु सींग परमेश्वर के पवित्र स्थान का हिस्सा थे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र स्थान की वेदियों में उनकी बनावट टिक्सों का भाग होने के रूप में सींग होते थे।
केवल इतना ही नहीं कि भविष्यवाणी के 4 राज्यों को दानियल ने पवित्र स्थान की शब्दावली के माध्यम से प्रस्तुत किया था, बल्कि अध्याय की कथा में ऐसे कई शब्द भी हैं जो सीधे परमेश्वर के पवित्र स्थान की सेवा से निकले हैं। अध्याय की कथा पवित्र स्थान की सेवा से लिए गए इब्रानी शब्दों के साथ प्रस्तुत की गई है, और साथ ही पवित्र स्थान की सेवा में भेंट प्रस्तुत करने की क्रिया भी अध्याय की संरचना में समाहित है। ये तथ्य कि दानियल ने जानबूझकर अध्याय 7 और 8 को आपस में जोड़ा उन लोगों को जो देखना चाहते हैं, ये दिखाता है कि अध्याय 7 बाइबल की भविष्यवाणी के राज्यों के राजनीतिक तंत्र की पहचान कराता है और अध्याय 8 उन राज्यों के कलीसियाई तंत्र की पहचान कराता है।
एडवर्नवाद को इस तथ्य को शैतानी दंत कथाओं से ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि ये मान्यता प्रकट करती है कि मिलर की रत्न ठीक वैसे ही थे जैसा परमेश्वर ने उन्हें होना ठहराया था। द डेली के विषय में मिलर की समझ का उनका अस्वीकार इस दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि परमेश्वर को कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उनका कहना है कि जब परमेश्वर ने पवित्र स्वर्गदूतों की सेवकाई के माध्यम से मिलर को वो ढांचा दिया तो वो सटीक नहीं था।
निश्चय ही तुम्हारा उलटपलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान समझा जाएगा, क्योंकि क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी उसने मुझे नहीं बनाया, या क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी उसमें बुद्धि नहीं थी। यशाया 29:4-16।
मिलर का ढांचा वो भविष्य सूचक संरचना थी जिसे उसने पहचाना और अपनाया, पर 1863 से आगे एडवेजवाद मिलर के स्वप्न के रत्नों को छिपाने के लिए धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के धर्मशास्त्रीय अनुप्रयोगों की ओर लौट गया। कार्य और कार्य के निर्माता को अस्वीकार करने के लिए एडवेजवाद ने एक झूठा ढांचा अर्थात निर्मित वस्तु स्वीकार किया। ऐसा करते हुए वे ये दावा करते हैं कि कार्य के निर्माता को कोई समझ नहीं है। उस ढांचे का अस्वीकार तब भी और आज भी उस ज्ञान वृद्धि का अस्वीकार था और है जिसकी मुहर 170 एंटियद ननवाव में खोली गई थी। जो लोग उस ज्ञान वृद्धि को अस्वीकार करते हैं वे कार्य और कार्य के निर्माता को अस्वीकार करते हैं, और दानियल के अनुसार वे दुष्ट थे।
बहुतों का शुद्धिकरण किया जाएगा और वे उजले किए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई न समझेगा परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियल 12:10।
दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे, इस प्रकार सत्य के प्रति क्रमशः बढ़ती हुई अस्वीकृति की पहचान होती है। ढांचे का दुष्टों द्वारा किया गया अस्वीकार ईश्वर का अस्वीकार है, और बदले में नकली ढांचे के माध्यम से जो अस्वीकृति वे अंजाम देना चाहते हैं उसके कारण ईश्वर की दुष्टों को अस्वीकार कर देते हैं।
ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो गई है, क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा, ताकि तू मेरा याजक न रहे। और क्योंकि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। होशे 4:6।
परमेश्वर के लोग जो 1844 से परमेश्वर के याजक थे, विलियम मिलर की सेवकाई के माध्यम से बढ़ाए गए उस ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए। होशिया में 6 पद के संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही संदर्भ सत्य के विरुद्ध बढ़ती हुई बगावत की पहचान करता है, जिसे ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
हे इसराइलियो, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि यहोवा का देश के निवासियों से विवाद है, क्योंकि देश में न सत्य है, न करुणा, न ही परमेश्वर का ज्ञान। शपथ खाकर, झूठ बोलकर, हत्या करके, चोरी करके और व्यभिचार करके वे उच्छृंखल हो उठे हैं, और रक्त पर रक्त लगता है। इस कारण देश विलाप करेगा, और जो जो उसमें बसते हैं सब कुमला जाएंगे, मैदान के पशुओं के साथ और आकाश के पक्षियों के साथ, हाँ, समुद्र की मछलियां भी नष्ट की जाएंगी। तो भी कोई न वाद विवाद करे, न एक दूसरे को ताड़ना दे, क्योंकि तेरे लोग याजक से वाद करने वालों के समान हैं। इस कारण तू दिन में ठोकर खाएगा, और रात में तेरे साथ भविष्यद्वक्ता भी ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो रही है, क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अस्वीकार करूंगा कि तू मेरे लिए याजक न रहेगा, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल दिया है। मैं भी तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा। जैसे जैसे वे बढ़े, वैसे वैसे उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया, इसलिए मैं उनकी महिमा को लज्जा में बदल दूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप को खाते हैं और उनकी अधर्मता पर अपना मन लगाए रहते हैं, और वहां जन जैसा वैसा याजक होगा, और मैं उनके चाल चलन के अनुसार उन्हें दंड दूंगा, और उनके कामों का फल उन्हें दूंगा। क्योंकि वे खाएंगे पर तृप्त न होंगे, वे व्यभिचार करेंगे पर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। व्यभिचार दाखमधु और नया दाखमधु बुद्धि को छीन लेते हैं। मेरे लोग अपने कांट से परामर्श मांगते हैं, और उनकी लाठी उन्हें बताती है, क्योंकि व्यभिचार की आत्मा ने उन्हें भटका दिया है, और वे अपने परमेश्वर से हटकर व्यभिचार में पड़ गए हैं। वे पर्वत शिखरों पर बलिदान करते हैं और पहाड़ियों पर धूप जलाते हैं, बलूत और पॉपलर और एल्म के नीचे, क्योंकि उनकी छाया अच्छी है। इसलिए तुम्हारी बेटियां व्यभिचार करेंगी और तुम्हारी पत्नियां परस्त्री गमन करेंगी। जब वे व्यभिचार करेंगी तब मैं तुम्हारी बेटियों को दंड न दूंगा, और जब वे परस्त्री गमन करेंगी तब मैं तुम्हारी पत्नियों को दंड न दूंगा, क्योंकि वे स्वयं वेश्याओं के लिए अपने को अलग कर लेते हैं और वेश्याओं के साथ बलिदान करते हैं। इसलिए जो लोग समझ नहीं रखते वे गिर पड़ेंगे। हे इसराइल, चाहे तू व्यभिचार करे तो भी यहूदा अपराध न करे। तुम लोग गिलगाल को न आओ, न बेत आवेन को ऊपर जाओ, न ये शपथ खाओ, यहोवा जीवित है, क्योंकि इसराइल पीछे हटने वाली बचिया के समान पीछे खिसकता है। अब यहोवा उन्हें विस्तृत स्थान में मेमने के समान चराएगा। इफ्राम मूर्तियों से मिला हुआ है, उसे छोड़ दो। उनका पेय खट्टा है, वे निरंतर व्यभिचार करते रहे हैं। उसके हाकिम लज्जा से प्रेम रखते हैं। 2:2, वायु ने उसे अपने पंखों में बांध लिया है, और वे अपनी बलियों के कारण लज्जित होंगे। होशे 4:1-3।
होशे की चेतावनी ये है कि देश के निवासियों से प्रभु का विवाद है, क्योंकि देश में न सत्य है, न दया, न ही परमेश्वर का ज्ञान। एडवेंटवादी अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा है। जिस दिन धूल झाड़ने वाला आदमी मिलर के कमरे में प्रवेश करता है, उस दिन एडवेंटवाद लोगों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं सहित जो नहीं समझता वो गिर पड़ेगा, क्योंकि वे मूर्तियों से जुड़ जाएंगे। उनकी मूर्तियां उनके नकली सिद्धांत हैं, जो एक नकली ढांचे में बुने हुए हैं।
ज्ञान में वृद्धि को अस्वीकार करने से दर्शाया गया विद्रोह, विद्रोह की एक क्रमिक बढ़ोतरी है जो उस बिंदु तक पहुंचती है जहां इस घोषणा के साथ उनका परीक्षा काल समाप्त हो जाता है कि वे मिलर के कक्ष से साफ कर बाहर किए गए मिथ्या सिद्धांतों से जुड़ गए हैं। उनका विद्रोह लगातार व्यभिचार करने के रूप में दर्शाया गया है। 1863 से आगे परीक्षा काल के समाप्त होने तक वे लगातार विद्रोह करते रहते हैं जब तक कि वे प्रभु के मुख से उगल नहीं दिए जाते। ज्ञान को अस्वीकार करने का ये विद्रोह उनके लगातार व्यभिचार करने द्वारा दर्शाया गया था, और यद्यपि ये वही इब्रानी शब्द नहीं है, इसका अर्थ इब्रानी शब्द तामीद के समान है जिसका अर्थ निरंतर होता है और जिसका अनुवाद दानियेल की पुस्तक में द डेली के रूप में किया गया है। अगले लेख में हम बाइबल की भविष्यवाणी के चार राज्यों के अपने अध्ययन को जारी रखेंगे।
तब मैंने डेली के संबंध में देखा कि सैक्रिफाइस शब्द मनुष्य की बुद्धि से जोड़ा गया था और मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसकी सही समझ उन लोगों को दी जिन्होंने न्याय के समय की पुकार दी। जब 1814 से पहले एकता विद्यमान थी तो लगभग सभी डेली की सही समझ पर एकमत थे, परंतु 1814 के बाद भ्रम के बीच अन्य विचारों को स्वीकार कर लिया गया है और परिणाम स्वरूप अंधकार और भ्रम छा गया है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 1 नवंबर 1850।